के लिए बुद्धि, बुद्धि है तो भोग में उलझी है। बुद्धि में जिज्ञासा होनी चाहिए सत्य वस्तु को पाने की, नहीं तो कितना भी भोग भोगा, जिस शरीर से मजा लिया उसको तो भैया जला देना है, ये तो बिल्कुल स्वीकार करना ही पड़ेगा। जिस शरीर से आप एयर कंडीशन का मजा लिया, पत्नी का, पत्तू का, उसका मजा मजा में अपने जीवन को होली कर दिया, उसको तो एक दिन जला देना है। और ऐसे तुमने हजारों बार शरीर, अनित्य शरीर जलाए, तो इस अनित्य शरीर को जीने के लिए, खिलाने के लिए, मजा दिलाने के लिए पूरा जीवन दांव पे लगा दिया। अरे थोड़ा सा समय जीवन दाता को पहचानते तो तुम तो अमर हो जाते, लेकिन तुम्हारी मीठी निगाहें पड़ती वो भी अमरता की झलकें ले लेता। तुम ऐसी चीज हो, नैनम छिद्यति शस्त्राणि नैनम दहाति पावक। शस्त्र से तुम कट नहीं सकते, अग्नि से तुम जल नहीं सकते, हवा में तुम सूख नहीं सकते, पानी में तुम डूब नहीं सकते। शरीर तो डूबेगा, शरीर पर तो असर होगी, तो वास्तव में तुम शरीर नहीं हो, लेकिन सुन सुन के भूल भुलैया पक्की हो गई, प्रगाढ़ हो गई। नेपोलियन कहता था 100 बार अगर असत्य दोहराया जाए वो भी सत्य होके भासता है, 100 बार झूठ बात हो वो भी दोहराई जाए तो सच्ची जैसी लगती है। क्योंकि सत्ता तुम्हारे सत्य स्वरूप की मिलती है, नित्य वस्तु अनित्य वस्तुओं को निहारने की सत्ता तो तुम ही दे रहे होगे, तो वास्तव में तुम सत वस्तु। उस सत स्वरूप का श्रवण करके मनन करो, श्रवण करके ज्ञान हो जाए तो बेड़ा पार है। अगर तीव्र जिज्ञासा है तो श्रवण मात्र से हो जाएगा, नहीं तो फिर मनन करो, मनन से नहीं होता तो नित्यध्यासन करो, फिर साक्षात्कार हो जाए। फिर इंद्र का वैभव भी तुम्हारे को प्रभावित नहीं कर सकेगा और नरक भी तुम्हारे लिए नरक नहीं बनेगा। सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और परलय तुम पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, तुम ऐसी चीज हो, ऐसा तुम्हारा अनुभव हो जाएगा। अभी तो जरा सा इधर उधर का होता है तो प्रभाव पड़ता है, हकीकत में तुम्हारे पर प्रभाव नहीं पड़ता, पड़ता है तो शरीर पर पड़ता है, मन पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है। और ये शरीर मन और बुद्धियां बदलती है, फिर भी तुम ऐसी चीज हो कि तुम्हारे को एक जरा भी आंच नहीं आती, लेकिन दुर्भाग्य से उसका तुमको पता नहीं है और बदलने वाली चीजों से जुड़ गए। जैसे आप कार में बैठे हैं, तो कार में बैठने के सेठ को ऐसा आदत पड़ गया, कार के साथ तादात में हो जाता है, ड्राइवर जरा ब्रेक लगाता है या स्टीयरिंग बदलता है तो अपने आगे की सीट पे होता तो अपने अपना दिल भी डोलता रहता है। कार जब पुल के नीचे से गुजरती है, रेलवे का पुल ऊपर है और कार नीचे से गुजरती है, ऊपर से रेलगाड़ी रवाना हो, तो आप कार में बैठे हुए भी आपका सिर नीचे हो जाता है, आपको उस समय याद भी नहीं रहता कि रेलवे के पटड़ियां हैं और मेरे सिर के बीच में कार की छत भी है, सिर नीचे नहीं करेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन हो जाता है, जुड़ जाते हैं कि ऐसा होता है। अनुभव करके देखो, आप साबरमती आओ, मोटेरा ऊपर से वो मेहसाणा लाइन है, दिल्ली अहमदाबाद दिल्ली, तो नीचे से रोड है ऊपर से पुल, जब उससे गाड़ी गुजरती और आप कार में या बस में बैठे हो तो आपका सिर यूं हो जाए। अब सिर ऐसा नीचे नहीं करे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये तादात्म्य हो जाता है, अध्यास हो जाता है। परमात्मा तत्व का अज्ञान है, हम क्या हैं, सत्य स्वरूप हम कैसे हैं, उस वस्तु का अज्ञान है। तो एक होता है अज्ञान, दूसरा होता है अध्यास। अज्ञान एक ही होता है, लेकिन अज्ञान का विस्तार अध्यास होता है। जैसे रस्सी में सांप दिख रहा है तो अंधेरा है, रस्सी का अज्ञान, फिर अध्यास हुआ कि रस्सी ये तो मरेला सांप होगा, किसी ने कहा ये होगा डांग होगी, किसी ने सोचा ना ना ये तो दरार होगी, किसी ने कहा पानी का चीला है, दूसरे ने कहा नहीं नहीं यार ये तो रस्सी होगी। अच्छा रस्सी है तो जरा जाओ तो पता चले, अब नजीक तो जा रहा है फिर भी अध्यास बना है अज्ञान के कारण, दोनों तरफ भागने की जगह देखता है। तो ऐसे ही अपने आत्मा का अज्ञान, इसलिए अध्यास हो गया। किसी ने कहा तुम पटेल है वो भी थोप लिया, किसी ने कहा तुम जीव है वो भी थोप लिया। अब बुद्धि में संस्कार पड़े जरा, हाड़ मांस रक्त वात पीत कफ का टेम्परेचर का थोड़ा संस्कार बुद्धि में पड़ गया, किसी ने कहा यू आर डॉक्टर, पक्का हो गया कि मैं डॉक्टर हूं कायदे कानून के पोथे पढ़े और किसी ने कह दिया कि अब तुम वकील हो गए, सनत भी मिल गई, अब हो गए वकील, ये अध्यास पड़ गया। हकीकत में तुम क्या है इसका अज्ञान है। और फिर जैसा जैसा कचरा भरता गया ऐसा ऐसा अध्यास पक्का होता गया और ये अध्यास अध्यास में जीवन उलझ गया। अगर अभी कोई कह दे कि तुम वकील नहीं हो तो आप नाराज हो जाए, कोई आपको कह दे तुम डॉक्टर वॉक्टर नहीं हो तो ये सत्संगी हो, आप लोग डॉक्टर बैठे हैं सत्संगी हो तो आप तो समझोगे कि किस अर्थ में कह रहे हैं। और दुकान पे कोई पेशेंट आके कह दे तुम डॉक्टर वॉक्टर नहीं हो, क्या लिया नहीं क्या आज तारा बाप में सर्टिफिकेट चले गए तो तुम किसी के सर्टिफिकेट से प्रमाणित हो रहे हो? कोई नु प्रमाण पत्र से तेजी तुम्हें प्रमाणित हो कितनी भूल भूलैया छे। राम तीर्थ जब अमेरिका से प्रवचन करके लौट रहे थे तो उनको प्रमाण पत्र दिए गए अखबारों में, उनके बड़े प्रशंसा, भारत के फिरस्ता है ऐसे महान योगियों के लिए, सुना था कि भारत योगियों का घर है लेकिन एक योगी का दीदार करते ही देशवासियों को पता चला है कि वास्तव में स्पिरिचुअल लाइफ कुछ है। उस समय प्रेसिडेंट अमेरिका का प्रेसिडेंट रूजवेल्ट रामतीर्थ के दर्शन करने आए। जब अमेरिका का राष्ट्रपति रामतीर्थ के दर्शन करने आए तो अखबारों ने और संस्थाओं ने रामतीर्थ की वाणी पर ध्यान दिया और वो लोग जरा कुछ लाभविंद हुए। तो जब विदा हो रहे थे तो विदा समारंभ घोषणा का विदा समारंभ में कईयों ने संस्थाओं ने अपने तरफ से रामतीर्थ को प्रमाण पत्र दिए कि तुम वास्तव में महान संत हो, कि रस्ता हो, ये हो ये हो, बड़ा बंडल दिया। स्टीमर चला तो रामतीर्थ ने उठाकर वो पूरा का पूरा प्रमाण पत्रों का जो गठरी था वो दरिया में दे दिया, दरिया में फेंक दिया। अरे राम बादशाह, तुझसे तो सारी सृष्टि प्रमाणित होती है और तू ये प्रमाण पत्र लेकर कहां फिरेगा? राष्ट्र रूजवेल जैसे राष्ट्रपति जिनके चरणों में आते हैं, ऐसे अखबारों में प्रशंसा, इतने सारे प्रमाण पत्र मिले। लेकिन रामतीर्थ को नित्य अनित्य दोनों को देखने वाले सत वस्तु का बोध हो गया था, इसलिए इन प्रमाण पत्रों को तो तुच्छ समझा, बंडल का बंडल दरिया में दे दिया। अरे राम बादशाह, तेरे से तो सारा विश्व प्रमाणित होता है, तू प्रमाण पत्र किसका लेकर फिरेगा? लेकिन हम लोग इतना बुद्धि में और इतने संस्कारों में उलझ गए कि छोटा मोटा ये स्टूडेंट लाइफ से लेकर ये सर्टिफिकेट लिया, वो लिया, वो प्रमाण पत्र लिया, वो लिया, वो लिया, और फिर अपने को प्रमाणित करते फिरेंगे कि हम ये हैं। लेकिन फिर भी तुम धोखा कर रहे हो अपने से। तुम इतने बड़े कितने भी प्रमाण पत्रों से बड़प्पन को पकड़ोगे तो तुम्हारे बड़प्पन की सीमा होगी। हकीकत में तुम्हारा बड़प्पन असीम है। ये तो तुम्हारी मति, और मति तो हर जन्म में बदलती रहती, जो बदल रही है जो वैश्या है, वैश्या को पुरस्कार मिले और वो सम्राट बोले मेरे पुरस्कार हैं तो बेवकूफ है कि नहीं? वैश्या को कोई पुरस्कार मिला और फिर सम्राट बोले कि मेरे को पुरस्कार मिला तो सम्राट सम्राट है क्या? बेवकूफ है। तो बुद्धि तो एक वैश्या है, ये तो बदलती रहती है, इसको ही पुरस्कार मिले, इसी को प्रमाण पत्र मिले और उसके प्रमाण पत्र हमारे हैं तो ये सम्राटों का सम्राट जीव बेचारा कितना बेवकूफ हुआ। हकीकत में जीव भी नहीं, हकीकत में तो चेतन है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहयन्ति जंतवा, कृष्ण ने कितना सत्य स्पष्ट कर दिया, अज्ञान से ज्ञान आवृत हो गया, इससे मोहित होकर बेचारे जीव भटक रहे। अर्जुन को भी तो मोह था, अर्जुन जैसी ऊंचाई वाला व्यक्ति बुद्धिशाली था फिर भी जिज्ञासा का अभाव था, कृष्ण के उपदेश से जिज्ञासा जगी, फिर शरणागत हुआ, तत्व ज्ञान का उपदेश मिला, तब सारे दुख दूर हो गए। और तो कोई धड़ाका बढ़ाका तो हुआ नहीं, केवल ना समझी मिट्टी और अर्जुन बोलता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। कृष्ण तो श्री कृष्ण तो साथ में थे और जो प्रॉब्लम था वो तो सामने ही प्रॉब्लम था ही, लेकिन उपदेश के बाद सारे प्रॉब्लम मिट गए क्योंकि अपनी अमरता का बोध हो गया। प्रॉब्लम तो इस शरीर तक है, मन तक है, इंद्रियों तक है, बुद्धि तक है, लेकिन अपने स्वरूप तक कोई प्रॉब्लम पहुंच नहीं सकता। प्रॉब्लम हैव बीन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम हो जाए, मृत्यु की मौत हो जाए अगर तुम्हारे नजीक आए तो मृत्यु भी तुम्हारे को छू नहीं सकती, परलय भी तुम्हारे को छू नहीं सकती, तुम ऐसी चीज हो। अभी तो जरा सा मोंघवारी नड़ती है, जरा सा अपमान नड़ता है, जरा सा मक्खी और मच्छर भी नड़ता है, अरे परलय भी नहीं नड़े तुम ऐसी चीज हो। बोले फिर ये मक्खी मच्छर प्रॉब्लम मेरे को क्यों नड़ते? भाई देखो, म्युनिसिपैलिटी का कचरे के ढगले पे तुम जाके बैठो फिर बोलो मक्खी मच्छर क्यों नड़ते हैं, तो उधर है ही। ऐसे देह तो म्युनिसिपैलिटी का, ये पांच भूतों का कचरा है। इस देह को मैं मानोगे तो प्रॉब्लम नड़ेंगे, प्रॉब्लम लगेंगे। हकीकत में ऐसे देह तो तुमने कई बनाए कई छोड़ दिए। अभी तो थाली में रोटी सब्जी कचुंबर दही चटनी चावल ये वो है, खाया तो मैं बन गए, आए तो पांच भूत का म्युनिसिपैलिटी का मास। अभी तो थाली में आ शू के रसोई छे ने, ये रसोई जम्या पछी ऐसे ही होता है कि और कुछ होता है? रसोई रसोई का ये दाल रोटी का ही तो स्ट्रक्चर है, जो दाल रोटी सब्जी है और विटामिन सो का छोरा बहुत जता है उसको मैं मानते। कितना बढ़िया ज्ञान है लोगों के पास, उसको मैं मान के फिर कोई किधर दौड़ रहा है, कोई किधर दौड़ रहा है, कोई किधर दौड़ रहा है। एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विण भूलिया एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। गुरु का मतलब नहीं कान फूंक दे, कंठी बांध दे, टीला कर दे, कन्या मन्या कुर तुम हमारे चेले हम तुम्हारे गुर, दक्षिणा धर तू चाहे तर चाहे मर। नहीं नहीं, गुरु का मतलब है गु माने अंधकार, रू माना प्रकाश। आपके शुद्ध बुद्ध स्वरूप का जो अज्ञान है उसको दूर करके आपको अपनी महिमा में जगाने का जो प्रयत्न करते हैं, जो जगाने को चाहते हैं, उन महापुरुषों का नाम गुरु है, उनको सदगुरु कहते हैं। कंठी गुरु होते हैं, विद्या गुरु होते हैं, संसार के छोटे छोटे ज्ञान देने वाले गुरु होते हैं, लेकिन सत्वस्तु का ज्ञान देकर सदा सदा के लिए मुक्त कर दे उसको बोलते सदगुरु। उनकी वाणी में बड़ा ओज होता है। सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। भरम डाल दिए गए ना, तुम हिंदू हो, तुम पंजाबी हो, तुम मारवाड़ी हो, तुम बेटे हो, तुम पति हो, तुम पत्नी हो, तुम छोकरे हो, तुम पर हमारा अधिकार है, दुनिया भर अधिकार, दुनिया के अधिकार हम पे बैठे, तुम्हारा ये कर्तव्य है, देश की सेवा कर्तव्य है, ये है, ये सारे कर्तव्य अल्प संख्या में पूरे करते करते आदमी मर जाता है। हकीकत में मेन कर्तव्य है अपने आत्मा को जानो, और अपने आत्मा को जाना तो उसने राष्ट्र की सेवा कर दी, विश्व की सेवा कर दी, 21 कुलों को तार दिया, सारे पितरों को तर्पण कर दिया उसने, ऐसा काम है। नातम तेन सर्व तीर्थम, दातम तेन सर्व दानम, कृतम तेन सर्व यज्ञम, ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम। एक क्षण के लिए जिसने उस अपने शुद्ध सत्वस्तु नित्य अनित्य से पर नित्य अनित्य का प्रकाशक उस अपने मैं में जिसने डेरा डाल दिया, उसने सारे पितरों को तर्पण कर दिया, पितरों का उद्धार कर दिया, 21 कुलों का उद्धार कर दिया, और देश में जहां रहेगा वहां उसको छूकर जो हवाएं जाएगी वो भी देश की सेवा करेगी, देशवासियों की सेवा करेगी। सच्ची सेवा तो ब्रह्मवेता ही कर सकते हैं, दूसरे लोग तो मानी हुई कल्पित भोग वासना बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, भोग की सामग्री बढ़ा के देंगे और तुम शरीर हो तुम फलाना हुई, ये भूल भुलैया मजबूत करेंगे और क्या सेवा करेंगे। सुधारक बेचारे समझते हैं कि भगवान ने सृष्टि बनाई और कहीं कोई कमी रख दी, हम सुधारा करके सब ठीक कर देंगे, अब उनके सुधार से ठीक होता तो इतनी परेशानी बढ़ती नहीं। सुधारक के पास भी जितना ज्ञान होगा वही तो सुधारा करेगा, जब तक आत्मज्ञान नहीं है तो अहम के हाथ में तराजू होगी उसके सुधारे की। अहम को पोषने का और साम्यवादी लोग बोलते हैं कि जिसके पास दो मकान है एक छीन लो, जिसको नहीं है वो दे दो, बात ठीक है चलो। फिर और क्या करें, जिसके पास दो गाड़ी है तो एक गाड़ी ले लें, जिसके पास नहीं उसको दे दे, करे हाँ है ये साम्य अवस्था आना। अच्छा तो जिसके पास दो भैंस है उसकी एक भैंस ले लें, जिसके पास नहीं उसको दे दें, बोले नहीं ये ठीक नहीं है क्योंकि दो भैंस तो मेरे घर में भी है। अपने ऊपर आया तो वहां साम्यवाद नहीं लगता, दूसरों को साम्य करके भी आप तो विषम होना चाहता है ना, लीडर बनना चाहता कि नहीं। ये साम्यवाद, ए बराबर वो बराबर, सबको बराबर करके सबके ऊपर कुर्सी तो तुम्हारी चाहिए। श्री कृष्ण का साम्यवाद ठीक है, बाहर से तो विषमता रहेगी, तुम्हारे अंगों में भी विषमता है, शरीरों में भी विषमता है, स्त्री पुरुष के शरीर में भी तो विषमता है, बाहर से विषमता रहेगी, लेकिन विषमता ये काल्पनिक है, प्रतिभासिक है। विषमता रहते हुए भी अंदर में जो सब में सम तत्व है उसका बोध हो जाने पर पूर्ण शांति, पूर्ण जीवन। देखो परीक्षित महाराज का जीवन अपने ढंग का है, जनक का अपने ढंग का है, सुखदेव जी का अपना ढंग का है, विवेकानंद का अपने ढंग का है, रामकृष्ण का अपने ढंग का है। बाह्य तो विषम है लेकिन अंदर से जो विवेकानंद का अनुभव है वही रामकृष्ण का है, वही रमण महर्षि का है, वही ज्ञानेश्वर महाराज का है, वही कृष्ण का है, वही कबीर का है, वही महापुरुषों का है, और वही आत्मा तुम्हारा। आत्मा में सब सम है, शरीर तो विषम होंगे, एक मॉडल शरीर का दूसरे से बराबरी नहीं कर सकेगा, साम्यवाद रहेगा कैसे, बदा चेहरा एक जेवा थी जाओ। प्रकृति में तो विषमता रहेगी, व्यवहार में विषमता रहेगी, लेकिन अंदर में ज्ञान में विषमता नहीं होनी चाहिए। व्यवहार में विषमता का मतलब ये नहीं कि शोषण किया जाए अथवा नोच लिया जाए समाज के हिस्से को, नहीं, अंदर में जब आत्मभाव होता है ना तो फिर सोचने के विचार नाश हो जाते हैं। ऐसा कोई योगी नहीं मिलेगा जिसने समता का अनुभव किया हो और शोषण करता हो, नहीं, उसके द्वारा पोषण ही हुआ है। और ऐसा कोई भोगी नहीं मिला होगा जिसने दूसरों का शोषण नहीं किया हो। भोगी दूसरों का शोषण किए बिना रह नहीं सकता, कोई भी भोग बिना शोषण के उपलब्ध नहीं है, भोगी शोषक होता है, भले अभी आपका पोषक दिखे लेकिन वो शोषण करेगा। वो भोगी अपना भी शोषण करता है, दूसरों के जो संपर्क में आता है उसका भी शोषण करता है, और योगी अपना भी पोषण करता है और उसके संपर्क में जो आते हैं उनका भी पोषण हो जाता है। इसीलिए हजार प्रयत्न करके भी आत्मवेता योगियों का संग करना चाहिए। जो जो स्वयं पोषित है वो दूसरों को पोषित करेंगे, जो स्वयं को शोषित करते हैं वो तुम्हारे को पोषित कैसे करेंगे यार। जो स्वयं अंधेरे में टकरे खा रहे हैं वो तुमको उजाला कैसे दिखाएंगे। स्वयं का मैं का ज्ञान नहीं है उन विचारों को, स्वयं के नित्य जीवन का, नित्य सुख का, सत्यम ज्ञानम अनंतम का गंध नहीं है तो तुमको कैसे देंगे। और जब तक सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का रस नहीं मिला तब तक संसार की भट्ठी का दुख दूर नहीं होता। संसार भट्ठी है, इसकी शुरुआत ही भट्ठी से होती है। रज और वीर ये कितना कोमल होता है, माता की गर्भाग्नि में रंधता है, पकता है। आप लोग तो डॉक्टर लोग हैं समझ सकते हैं, कितना गर्भाग्नि का सेक मिलता है तब तो ये बोन्स बनते हैं, हड्डियां बनती, खोपड़ी बनती और ऊंधा लटकता है। एक लड़का MBBS कर रहा था, साधक था, मैंने कहा MBBS करो ठीक है, MD करो हमारा इनकार नहीं है, लेकिन फिर जिससे सब किया जाता है उसको जान लो। रामकृष्ण भी ऐसा बोलते थे, मैं भी ऐसे बोलता हूँ। बोले स्वामी जी मैं उसी लिए पढ़ रहा हूँ, MD भी करूंगा। अभी बुद्धिशाली था तो डॉक्टरी विद्या पढ़ने के बाद ये सब ऑपरेशन, ये मेढक चीरना, ये सब देख कर ऑपरेशन करेंगे तो सब दिखेगा, नहीं तो जरा वैराग आ जाएगा और हृदय में जो भगवान बैठा है उसको भी खोल के देख लेंगे। फिजिकल बॉडी में, फिजिकल आंखों से अगर भगवान दिख जाता तो वेद शास्त्र और गुरुओं की जरूरत ही नहीं, कांच चीर के एक आदमी को सब लोग देख लेते। नहीं दिखता।
कई सर्जन मिलकर एक आदमी का वो एक्सरे करें और फिर उसका ऑपरेशन करके फेफड़ों को हृदय को एक पुर्जा पुर्जा अलग रख दें, फिर भी नहीं बता सकते कि कौन से हिस्से में इसने इनसे प्यार किया होगा, घृणा भी की होगी, भय भी रहा होगा, लेकिन कहाँ है? और फिजिकल शरीर में तो दिखेगा नहीं स्नेह, स्नेह का कोई स्पेयर पार्ट नहीं दिखेगा, फिर भी जीवन में स्नेह भी होता है, भय भी होता है, घृणा भी होता है, उर्मिया होती है ना? उर्मिया कौन से स्पेयर पार्ट में होती है? ऋषि दयानंद ने सुना था कि कुंडलनी जागृत होती है तो साधना अपने आप होने लगती है, और सात चक्र होते हैं, उनको वहां के क्या पता, जैसे और पूजा पाठ में पंडों ने कुछ एकड़म तिगड़म लगा दिया, ऐसे ही कोई योगियों ने ऐसा कर दिया होगा। तो ऋषि दयानंद जैसा आदमी काशी में, कई लोग गंगा में मुर्दा परवान कर देते, वो छुपके मुर्दा उठा के जंगल में ले गए, उसको ठीक काट कूट के उसका पुर्जा पुर्जा देखा, फिर उन्होंने लिखा कि सात चक्कर बकरा कुछ नहीं होता है, कुंडलनी मुंडलनी कुछ नहीं होती। ऋषि दयानंद जैसे आदमी था, उनको पता नहीं कि ये स्थूल शरीर का विषय नहीं है, ये प्राणमय कोष में है, अन्नमय कोष में नहीं देखेगा। कुंडलनी मुंडलनी जो ऐसी चीज नहीं है कैसे देखो, योगियों के पास जाकर देखो, प्राणोत्थान होता है, चक्र विकसित होते हैं, सेक्सुअल चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, चक्र नाम रखा है, हकीकत में वो होते हैं ऐसे केंद्र कुछ गलफड़े सिंधी में, उनको चक्र नाम दिया क्योंकि वहां से और नाड़ियों की शाखाएं जाती, सहस्त्र सार चक्र है मस्तिष्क में, योगिक अलंकारिक भाषा, लेकिन ये कुंडलनी वगैरह जागृत होती है, प्राण उत्थान होता है, सुख का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, आवेश का अनुभव होता है। स्थूल शरीर को खोजो तो कहां सुख है, कहां आवेश है, ये तो अपना पांच बॉडी है, ये फिजिकल बॉडी, इसको अन्नमय कोष बोलते हैं, इसके अंदर प्राणमय कोष है, इसके अंदर मनोमय कोष है, तो जितना अंदर का कोष उतना आत्मा की नजीकी, इसीलिए मनोबल जिसका बढ़िया होता है उसको फिजिकल बीमारी असर नहीं करती, और होती है तो चली जाती, और मनोबल जिसका वीक होता है और बीमारी का रिपीटेशन करता है उस पर तुम लोगों का भी ज्यादा जोर नहीं चलता। आप लोग तो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, तुम भी कितना ही पेशेंट को ले आए हैं कि पेशेंट को दवा असर नहीं करती, क्यों असर नहीं करती, कि मानसिक है। तो मानसिक रोग को अगर पकड़ रखा उसने, रोगी ने मैं रोगी हूं ये पकड़ रखा है, और डॉक्टर की दवाई से कुछ नहीं होगा ये उसने पकड़ रखा है, तो डॉक्टर दुनिया भर की दवाइयों का भाव जोर मार दे, कुछ नहीं होगा। पहले तो उसको डॉक्टर की औषध में विश्वास होना चाहिए, उसकी अपनी सम्मति जब तक रोगी की नहीं होती तब तक हकीम डॉक्टर वैद्य और संत उसको ठीक नहीं कर सकते, अपनी सम्मति चाहिए उसको, ठीक है ना। इसीलिए ऐसे भावना प्रधान योगी को ऐसे ही जांचना पड़ता है, ऐसे ही तपासना पड़ता है कि डॉक्टर साहब बहुत ध्यान आप हमारा ऊपर, ठीक है ना, ये डॉक्टर साहब की दवा से मेरे को मिट जाएगा, उसके अंदर से सम्मति होनी चाहिए। तो अन्नमय कोष से प्राणमय कोष अंदर है, प्राणमय कोष से मनोमय कोष अंदर है, मनोमय कोष से विज्ञानमय कोष अंदर है, विज्ञानमय कोष से आनंदमय कोष, ये पांच परतें। डॉक्टरी इलाज तो पहली परत तक चलता है, अगर डॉक्टरी विद्या से सब कुछ हो जाता तो फिर डॉक्टर बेचारे सत्संग में क्यों जाते, डॉक्टर माला क्यों लेते, डॉक्टर भगवान को क्यों मानते, बोले नहीं मानते, नहीं मानते तो और अशांत रहेगा, नहीं मानेगा तो और अहंकारी बनेगा। मानना एक बात है, मानता मान्यता में संदेह बना रहता है, ज्ञान में संदेह नहीं है। ठीक जान लिया ने फिर संदेह नहीं होता। मान लो कि मेरे हाथ में अठन्नी है, आप मान लेंगे फिर भी संदेह उसी समय होगा, क्या पता है कि नहीं है? तुरंत संदेह रहेगा और बोधा बोधा आवाज रहेगा कि हाँ महाराज जी कहते हैं अठन्नी है हाथ में, चलो मान लिया, जेब में हाथ डाला, भैया देखो मेरे हाथ में अठन्नी है, मान लिया, विश्वास कर दिया। लेकिन विश्वास की अपेक्षा ज्ञान ज्यादा पुष्ट होता है, विश्वास किया महाराज का हाथ में अठन्नी है, ये मुट्ठी बंद है, मैंने जेब में हाथ डाल दिया, ये मुट्ठी बंद, मेरे हाथ में अठन्नी है, आप मान लो मैं सच बोलता हूं। फिर भी आपके अंतःकरण में एक बारीक बारीक संदेह होगा, क्या पता अठन्नी होगी, मानते तो बोधू बोधू कहीं फंसे, लेकिन आपको दिखा दिया ये अठन्नी, फिर मुट्ठी में बंद। अब मैंने कहा भी नहीं कि मान लो अठन्नी, आपने जान लिया, आप दुनिया भर के सब लोग आके मिले, 1000 सूरती आ जाए, 2000 अमदावादी आ जाए, 5000 दिल्लीवादी आ जाए, और आपको दे कह दे कि इनके हाथ में अठन्नी नहीं है, तो क्या आप बहुमति पे चलेंगे क्या? बहुमति का प्रभाव अज्ञान दशा में पड़ता है, ज्ञान दशा में नहीं पड़ता। जय जय, इसीलिए ज्ञानी के चित्त पर बहुमति का प्रभाव नहीं पड़ता। श्रेष्ठ मति सत्य, सत्य का जिसको बोध हो गया उसको सारी दुनिया विरोध में खड़ी हो जाए तभी भी उसका सत्य के बोध में खतरा नहीं है, सारी दुनिया वाह वाह करने लगे तभी इम्प्रेस नहीं होता, क्योंकि उसको सत्य साक्षात्कार हो गया। तो बात चली थी ये पांच कोश, इन पांचों कोशों को प्रकाश चैतन्य का होता है सत्व वस्तु का, इसी से ये हाड़ मांस रोटी दाल भी चलता फिरता है, प्राण भी चलते हैं, मन भी विचार करता है, बुद्धि भी अपना नहीं चलती। भोजन जो करते हैं उसमें से तीन हिस्से होते हैं, स्थूल हिस्सा हर रोज त्याग देते सुबह को, मध्यम हिस्सा से मांस पेशी और रक्त बनता है, और उत्तम हिस्सा से मन और बुद्धि का संचय होता है। हकीकत में मन और बुद्धि भी तुम्हारे अन्न और जल से ही बनते हैं। तो ये सब नित्य और अनित्य वस्तु से, सत वस्तु से इनका कोई सरोकार नहीं है। तो आप तो मन को प्रसन्न करने में लग गए, बुद्धि को बढ़ाने में लग गए, तो ये भी तो जो पांच भूतों की तो है चीजें। सम्राट ने वैशा के कपड़ों को सजाना कर दिया, सम्राट ने वैशा के घर को सजा दिया, लेकिन सम्राट को पता ही नहीं मैं सम्राट हूं, तो सम्राट काय करा। ऐसे ही अपने को पता ही नहीं मैं चैतन्य वपु मुक्त आत्मा हूं, बुद्धि को सजा दिया, मन को जरा प्रसन्न कर दिया, शरीर को जरा बढ़िया बना दिया, लेकिन आखिर में तो मजूरी मिली। आखिर क्या मिला? तो प्रकृति की चीजें हैं ना, शरीर मन बुद्धि पांच कोश ये सब प्रकृति के हैं ना, तो उसमें मजूरी कर करके आखिर क्या मिला? अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ तो सब धोखा ही धोखा है, सब भूल भुलैया है। लेकिन उस भूल भुलैया में भी जाने के लिए वो लोग तत्पर हैं कि टाइम थी गयो जाइए, कारण के पेलू बगड़े नहीं, मान लिया भाई केटलू आचू चेवटे मृत्यु नो झटको बधु बगाड़ी नाखे, पर लेनी हवा बधाने स्वाह करी लेशे। नारायण नारायण नारायण। दुनिया के लोग कितना भी सुधार कर करके वस्तुओं का ये उसका, फिर भी अंत में देखो तो बेचारे ठन ठन पाल हो जाते, पछताते हुए मरते, कुछ न कुछ जवाबदारी बाकी रह जाती। अखा भगत ने कहा, अखो कहे अंधारो कुओ झगड़ो मटाड़ी कोई नाम हुओ। आ जगत नो व्यवहार बधो फिट करी व्यवस्थित करीने कोई निश्चिंत थईने मर्यो है? संभव नहीं। निश्चिंत तत्व का जिसको बोध हुआ वही निश्चिंत हुआ, बाकी का तो चल वस्तुओं को निश्चिंत करने में लगा, वो तो लगा ही रहेगा। बोले आ मानस बहु होशियार छे बापू, अरे क्या एटलो बोधो होशियार वकील छे के पहला एनी पासे कोई नतू, अत्यार तो बे गाड़ी हो आ एवो मानस, तो पहला तो कोई एनू जान एने जानतो नतो, अत्यारे बहु प्रसिद्ध छे। अरे तो क्या करा, ये बहु चलतो पुरजो छे। हाँ वात साची भाई, चलता पुर्जा है, कई माताओं के गर्भ में ये चलता ही रहेगा, अपने आप में बैठेगा नहीं जल्दी से। जितना आदमी कपटी होता है होशियार उसको बोलते हैं, कपटी को होशियार बोलना बेवकूफी है। संसार की वस्तु बढ़ा के और अहंकार को बढ़ा दिया उसको होशियार बोलना, ये संसारी की नजर है। और इधर उधर कावा दवा करके टांटिया किसी का खींचकर ऊंची कुर्सी पे मिल बैठ गया और उसको होशियार बोला, ये नेताओं की नजर है। समाज में एक दूसरे को पोलसन लगाकर और अपना प्रतिष्ठा जमा लिया, उसको किसी ने होशियार कहा, यह सामाजिक व्यक्तियों की नजर है। लेकिन कृष्ण की नजर क्या है? वेद की निगाह क्या है? वेद और कृष्ण और भगवान आपको होशियार तब बोलेंगे कि जाने जीव तब जागा, तुम तभी जगे, हरि पद रुचि विषय विलास विरागा। परमात्मा तत्व में, परमात्मा पद में, परमात्मा स्वरूप को जानने में रुचि है, विषय विलास से विराग है, तब वो आदमी होशियार है, तब वो जगा। अहंकार बढ़ा दिया, वस्तुएं बढ़ा के लोग अहंकार बढ़ाते हैं। आप मैं क्या हूं इसका पता नहीं, इसलिए कुछ न कुछ बन के दिखाने में सब लगे। कोई बड़ा अधिकारी बन के दिखाऊं, बड़ा डॉक्टर बन के दिखाऊं, बड़ा योगी बन के दिखाऊं, बड़ा संत बन के दिखाऊं, बड़ा मकान करके दिखा दूं, ताकि कुछ तो रहे कि दुनिया में आया था, ये कर गया था। लेकिन तू है क्या उसका पता नहीं, इसलिए कुछ न कुछ करके दिखाने में लगे। और तुमने कितना भी बढ़ाया तो तुमसे छोटों के आगे तुम जरा बड़े दिखोगे, अहंकार का सुख होगा। लेकिन तुम्हारे मकान से और किसी का बड़ा मकान दिखेगा तब सुकड़ान भी होगी। तुमने कुर्सी पा ली तो छोटे व्यक्तियों के आगे तुम्हारी कुर्सी का वट रहेगा, लेकिन तुम्हारे से भी किसी की बड़ी कुर्सी होगी तो सुकड़ जाओगे। हे कि नगरपति है तो साधारण आदमियों के आगे कॉरपोरेटर वट मारता है, और कॉरपोरेटरों के आगे नगरपति पद का वट आता है। लेकिन वो महाराज मिनिस्ट्री में जाता है तो कॉरपोरेटर वहां लेफ्ट राइट लेते रहते गांधीनगर में, कोई वैल्यू ही नहीं। लेकिन वो गांधीनगर के लोग बेचारे फिर दिल्ली में लेफ्ट राइट लेते रहते, जय जय। और फिर उससे भी पोस्ट ऊंची है इंद्र के या और बड़े बड़े राष्ट्र वाले हैं राष्ट्रपति, उनके आगे वो लोग लेफ्ट राइट लेते, अंत में मृत्यु के आगे सब लोग लेफ्ट राइट लेते हैं, और मृत्यु भी परमात्मा के आगे लेफ्ट राइट लेता रहता है। वो परमात्मा तुम्हारा आत्मा है तो उसको जान लो ने, सीधा एकदम सीधा कनेक्शन कर लो। कब तक यूं वाया वाया करके अपने को विनाश करोगे? अनंत अनंत यमराज पैदा हो कर लीन हो जाते, अनंत अनंत नरक और स्वर्ग बन बन के जिसमें मिट जाते। वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तुम्हारा आत्मा अभी तुम्हारे साथ बैठा है, उसको जान लो बस।